माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jai Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivijaka Acharya Ashtodasha Sri Srimad Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Namacharya Haridas Thakur Ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda Chautha, Adhyay 18 aur Shloka Kramank 5. Tananam drushyam yo vidvan artha arambhate swayam tasya vyabhicharam artha arabdhasyam puna punaha tananam drushyam yo vidvan artha arambhate swayam tasya vyabhicharan artha arabdhasyam puna punaha tananam drushyo vidvan artha arabhate swayam tasya vyabhicharan artha arabdhasyam puna punaha. Tanana drushyo vidvan artha arabhate swayam arabdhasya puna punaha mat anana drushyo vidvan artham arabhate swayam tasya vyabhicharan artha arabdhasya puna puna. Mataji, koi tanana drushyo vidvan artha arabhate swayam tasya vyabhicharan artha arabdhasya puna puna. Iska इसका अर्थ ऐसा है, ऐसा मूर्ख मनुष्य जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है और साधुओं द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों को मान्यता प्रदान नहीं करता, वह अपने प्रयासों में बार बार असफल रहता है, क्यों होता है? तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा आजकल प्राचीन आचार्यों तथा मुक्त पुरुषों द्वारा दिए गए निर्देशों आदेशों का उल्लंघन करना एक फैशन बन चुका है। आजकल के लोग इतने पतित हो चुके हैं कि उन्हें मुक्त जीव या बद्ध जीव में अंतर प्रतीत नहीं होता। बद्ध जीव में चार दोष होते हैं, वह त्रुटि करेगा, वह मोहग्रस्त होगा, वह दूसरों को धोखा दे सकता है तथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। अंततः हमें मुक्त पुरुषों से आदेश ग्रहण करना होगा। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है जो इन आदेशों का दृढ़ता से पालन करते रहते हैं। कोई अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष न हो, किंतु यदि वह मुक्त रूप श्री भगवान का अनुसरण करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके कर्म भौतिक प्रकृति के कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। अंततः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे आदेशों से तुम गुरु बन सकते हो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आदेशों में पूर्ण श्रद्धा रखकर तथा इन आदेशों का पालन करके मनुष्य तुरंत गुरु बन सकता है। भौतिकवादी लोग मुक्त पुरुष से आदेश ग्रहण करने में रुचि नहीं रखते, वे तो अपने ही कल्पित विचारों में रुचि रखते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने प्रयासों में बार बार असफल होना पड़ता है। क्योंकि अब सारा संसार बद्ध जीवों के अपूर्ण आदेशों का अनुसरण कर रहा है, इसलिए मानवतः पूर्णतः मोहग्रस्त है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाञ्च सागरजातं सहगणरणिता श्री विशाखान्वितांच श्री रूपं सागरज साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो ओम विष्णुपादान् विष्णुपतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज श्रीमद् भागवत के 18वां अध्याय जो है और 5वां श्लोक के ऊपर 5 से 11 जो श्लोक की क्रमशः जो है तो उसके अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसका पहले जो श्लोक है उसका वृत्तांत इस प्रकार है कि पृथु महाराज पृथु महाराज को पृथ्वी देवी जो है भूमि देवी प्रार्थना कर रही है। वो गाय का रूप धारण करके और पृथु महाराज धनुष लेकर उनके पीछे और पृथ्वी देवी आगे आगे चल रही है और इस प्रकार वो पृथु महाराज को प्रार्थना करती है। तो यही प्रार्थना आगे है कि उसने जो है जो बीज जो है जो अनाज के लिए जो आना चाहिए जो फल फूल जो भी कुछ है वो नहीं आ सकते थे, इसलिए पृथु महाराज उनके ऊपर क्रोध कर रहे थे। और फिर भूमि देवी जो है प्रार्थना विनीत भाव से यहाँ पर कर रही है कि किस लिए मैं जो आपने जो बीज जो भूमि के अंदर जो बो दिए थे लेकिन वो नहीं ऊपर आए, तो इसका कारण वो बताती है कि जो मूर्ख मनुष्य जो है यानी कि ये भूमि के ऊपर क्या हुआ है कि जो असुरी लोग है जो अभक्त है इन्होंने ये जो सब लोग है ये मेरा आदर तो नहीं करते लेकिन कोई देवी देवता जो है उनका भी आदर नहीं करते, और इसलिए मैंने जो बीज जो है, जो फसल जो है, ऊपर नहीं आ रही है। तो उसका कारण जो है बहुत सकारण वो बताती है, अनेक अनेक उसके उदाहरण देती है। उदाहरण देते हुए वो एक यहाँ पर बताती है कि जो लोग, जैसा कि नास्तिक है, अभक्त है, और इसकी वजह से मैं जो अच्छी तरह से जो जैसा मुझे काम करना चाहिए मैं नहीं कर सकती, और यही कारण है कि मैं जो आप चाहते हैं वे तो मैं ये मेरे से काम नहीं हो रहा है। तो अनेक अनेक वो रूप से बताती है कि जैसा कि बताया जाता है कि अगर भूमि में भूमि के लिए कोई फसल अगर आनी चाह आना है तो उसके लिए पानी की जरूरी होती है, पानी का ज़रूरत होती है, और दूसरा उपजाऊ होना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे बातें हैं, वातावरण उसका होना चाहिए। तो सब चीज़ होने के बाद में ही फसल अच्छी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर सब होने के बावजूद भी यहाँ पर क्यों नहीं आता है। तो यहाँ पर बताते हैं श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कि जब भी नास्तिक लोग उपभोग करना करते हैं, कोई भी चीज़ का भोग करना चाहते हैं, तो प्रकृति जो है, जो उसके पास है वो देना बंद करती है या कम कर देती है। जैसे कि हम देखते हैं कि आचार्य जो है, आचार्यों के बतलाए मार्ग जो है उसका अनुसरण न करना। जैसे कि आचार्यों ने बताया है कि यज्ञ करना, यज्ञ से सब कुछ ठीक हो सकता है, और यज्ञ करने से अन्नाद भवंती भूतानि, जैसे कि अन्न जो है कैसा प्राप्त होगा, तो जल की वर्षा से हो जाएगा। वर्षा कैसी आएगी, तो देवता को प्रसन्न करना पड़ेगा, और देवता को प्रसन्न करना है तो उसके लिए यज्ञ जो है उसका जो विधि है उसी प्रकार करना पड़ेगा। तो हम ये शास्त्र में है, लेकिन तथाकथित जो बुद्धिजीवी वर्ग जो है तो उसको छोड़ के वो अपनी बुद्धि लगाकर ज़्यादा उत्पादन कैसा आए उसके बारे में ज़्यादातर सोचते हैं। जैसा कि 1950 to 1960 इसके दरमियान हम देखा था, हमने जब भी हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र होने के बाद तो अनाज की बहुत ही अनाज जो है बहुत कम हमारे यहाँ पर होता था, प्रोडक्शन उसका बहुत कम होता था। तो उसके लिए क्या करे, उसके लिए बहुत सारे विचार मंथन हुआ, और फिर जैसा कि आप जानते होंगे कि हरित क्रांति जो है कि अच्छे उपजाऊ या उन्नत बीज जो है हमने लाए, और उसकी फसल जो है हमारे कुछ भारत में पंजाब और हरियाणा और कुछ उत्तर भारत के जो जगह थी वहाँ पर हमने उसके प्रयोग किए। तो वो कमिटी थी स्वामीनाथन आयोग या स्वामीनाथन कमिटी, उससे जाना जाता है, हरित क्रांति के जनक बोला जाता है उनको। तो बहुत सारा फसल तो आ गया, धीरे धीरे जो हम बाहर से जो अनाज मंगा देते वो तो कुछ मात्रा में कम हो गया, लेकिन उसके बाद ऐसा शुरुआत में वहां पर बताया था कि एक एक कर में खाली अभी उन्नत बीज रहेंगे तो सीधी सी बात है कि वो क्या हो गए, ज्यादा उनको खाद भी लगेगा। तो उसलिए जो उर्वरक है यानी कि जो फर्टिलाइजर है वो डाला जाता था। तो शुरुआत में खाली 2 किलो फर्टिलाइजर डालने का बताया गया था तो पूरा 1 एकड़ में खेती आ सकती है। लेकिन जब ये सर्वे हुआ 2005-2006 में तो 1 एकड़ में कम से कम 300 किलो खाद उर्वरक डालते हैं और डाला जाता है। और कुछ दिनों के बाद अभी अभी कुछ तो उसके लिए तो पानी लगता था तो जो भूमि की जो अंदर का जो क्षार है बताया जाता है तो वो पूरा सल्फेट जैसा ऐसा ऊपर आता है अभी भी और बंजर जमीन बनी हुई है। जो हम प्रोडक्शन निकालने के लिए गए वहाँ पर तो उसका साइड इफेक्ट भी वहाँ पर हमें दिखाई दिया। जैसा कि ऐसा ही नहीं कि खाली जमीन के बारे में उन्होंने किया, बड़े बड़े डैम बनाए, उसके बाद में कैनल बड़े बड़े है उसके लिए जमीन भी समतल कर दी और उपजाऊ सीड भी लेके आए, सीड बैंक भी बड़े बड़े बनाए और सबको अनाज भी मिलना चाहिए इसके लिए एक कारपोरेशन भी किया कि वहाँ से सप्लाई वो सब पूरा भारत में हो जाए, जैसे कि रेशनिंग पे आ जाए सब धान। लेकिन ये सब होने के बावजूद दूसरे प्रॉब्लम उसमें उपस्थित हुए, अनेक प्रकार की बीमारियां उसके साथ में आ गई, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी, शुगर जैसी बीमारी। तो ये और उसके साथ में हॉस्पिटल भी बन गए ज़्यादा, क्योंकि बीमारी ज़्यादा बनी तो पेशेंट भी ज़्यादा बन गए। तो यही कारण है कि मुख्य रूप से हम जो करना चाहिए था वो नहीं किया, जैसा कि उसका शास्त्र में बताया है विधि विधान जो है। तो अगर विधि विधान की ओर से हम अगर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि शास्त्र में बताया है कि किस प्रकार से फसल या अनाज कैसे कैसे पैदावार हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, तो वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। खाली अभी का ही नहीं, जैसा कि पहले से ही, जैसे कि ऐसा उनको ये नहीं कि मालूम है सब, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, उसको साइड करना है। और यही कारण है कि हम जो दुख जो है दुख झेलते हैं। जैसे कि शास्त्रों में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, रावण का उदाहरण है, क्योंकि विधि विधान क्या बताता है कि अगर आपको भगवान के धाम में जाना है तो क्या करना चाहिए, भक्ति मार्ग सबसे अच्छा है, भगवान को शरण जाना चाहिए। लेकिन शॉर्टकट देखा जाता है, जैसे कि रावण ने क्या किया, तपोबल से बहुत सारी शक्तियां अर्जित की और खुद उसने अपने मनोकल्पना से सीढ़ी बनाने का सोच रहा था वो, कि यहां से मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊ शॉर्टकट, और यही देह से मैं डायरेक्ट जो है स्वर्ग में जाऊ। और मेरे जितने भी लोग जिन्होंने कुछ भी कर्म किए हो वो भी मेरे साथ साथ आए। तो यही है। दूसरा एक उदाहरण आता है रामायण में, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक त्रिशंकु का उदाहरण है, जो कि वो भी शॉर्टकट जैसा है, शॉर्टकट करना चाहते हैं कि एक राजा थे त्रिशंकु नाम के। ये रामायण के शुरुआती में ये आता है, जब भी विश्वामित्र का चरित्र जो है रामायण में आता है तो उसी बालकांड में ये सब आता है। तो यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश जो है उनके वंश में ये त्रिशंकु राजा होकर गए, पराक्रमी थे, बल पराक्रम सब भरपूर था उनमें। उनके मन में विचार आया कि इतना मैं अच्छा हूँ, सब लोग जो है मेरा जय जयकार करते हैं, और जहाँ पर भी जाता हूँ या जैसा कि युद्ध के लिए जाता तो मैं जीतता हूँ और मेरे अंदर सब गुण है, तो क्यों ना ये शरीर जो है शरीर के साथ में स्वर्ग चला जाओ। तो ये सोचता सोचते उन्होंने, उनके जो पुरोहित थे, कुल के पुरोहित थे वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि, उनके पास जाकर उन्होंने बताया कि मुझे यज्ञ करना है। इतना विधि, ये विधि तो उनको मालूम थी कि यज्ञ करने से सब कुछ मिलता है। तो वशिष्ठ ने बोला ठीक है, लेकिन कौन सा यज्ञ करना है, क्या करना है, क्योंकि पुरोहित को पूरा बताना पड़ता था। तो उन्होंने बताया कि ऐसे बात है कि मैं स्वशरीर, इस शरीर के साथ मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो राजा होने के कारण वशिष्ठ मुनि ने कुछ जवाब नहीं दिया, मौन रहे वो। फिर भी वो बार बार पूछ रहे थे, और बार बार पूछने के बाद वशिष्ठ मुनि बोले ये असंभव है, ये शरीर के साथ आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये शरीर स्वर्ग जाने के लिए दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है, और उसके लिए बहुत सारा पुण्य अर्जित करना पड़ेगा। आप वैसे भी स्वर्ग जाओगे लेकिन इस शरीर के साथ में नहीं। तो राजा के मन हटी था, तो उसने बोला कि ऐसा कैसा हो नहीं सकता है, आप अगर नहीं करोगे तो हो सकता है मैं और किधर कहाँ से तो मार्ग निकालूंगा। तो फिर वशिष्ठ मुनि के जो पुत्र थे तो उनके पास गए। उस टाइम वो पुत्र जो है दक्षिण की ओर वो तपस्या में लीन थे, और उनके पुत्र के पास जाकर वो त्रिशंकु राजा जो है वहाँ पर वो जाके उसने वही विधान जो है पुत्रों से किया कि हे पुत्रो, हे ऋषि पुत्रो, कि आप मेरा एक, मैं मन में सोचा है ये बात, तो कृपया करके ये सफल होने के लिए आप प्रयत्न करें। तो पुत्रों ने पूछा क्या है क्या नहीं, सब उसके बारे में पूछा। तो उन्होंने पूरा जो वृत्तांत है पहला, तो सब बताया कि आपके पिताजी के पास हम गए थे लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं हो सकते ऐसा। तो पुत्रों को बहुत गुस्सा आया, बोले हमारे पिता के विरुद्ध में हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं, तो आप यहाँ से चले जाओ, ये असंभव है। अगर उन्होंने बताया है, आपके कुल पुरोहित है, अगर उन्होंने आपको बताया है कि ऐसा असंभव है, तो फिर आप बार बार उसका हट क्यों कर रहे हो। तो राजा बोला देखो मैं राजा हूँ और मेरे पास धन है, मैं और कोई पुरोहित देखूंगा, आप नहीं तो और कोई। तो फिर उनको बहुत एकदम संतप्त हो गए वो पुत्र, और उसमें उन्होंने शाप दे दिया उसको कि तुम ऐसी तुम्हारी समझ है, तुम चांडाल बन जाओ। अभी शाप तो दिन में दिया होगा, तो रात जैसी जैसी होती गई वैसे उसके जो शरीर जो है, शरीर का जो आकार है वो चांडाल जैसा होने लगा। जैसे कि राजा के जब लंबे लंबे बाल होंगे तो एकदम छोटे छोटे बाल हो गए, एकदम झुरकोट जैसे एकदम छोटे, और उसका शरीर जो है, शरीर का रंग भी एकदम काला कलूटा जैसा, क्योंकि बहुत सारे उग्र कर्म या पाप कर्म करने के बाद जैसा रंग होता है काला सा, उस प्रकार का जो रंग है उसका होने चालू हुआ, कद बौना हो गया। और लेकिन उसमें स्मृति थी कि मैं राजा हूँ। जैसा ही वो उठा और महल से बाहर गया, और महल से बाहर जाने के बाद सब लोग उसको देख के डर के भागने लगे, उस सेनापति बाद में उसके सैनिक उसको देख के डर के मारे भागने लगे, हमारे राजा क्या बन गए, चांडाल बन गए। तो उसने फिर भी हट नहीं छोड़ा, इतनी उसकी बेइज्जती होने के बावजूद भी वो कहां पर गया? विश्वामित्र जो है तपस्वी, उनके पास गया। अभी उनके पास जाने के बाद पहला कैसा होता था कि जो भी कोई विनीत भाव से, नम्र भाव से कोई तपस्वी के पास या भक्त के पास, किसी के पास भी, ऋषि मुनि के पास जाता था, पूरा बताता था तो उसका कारण पूछा जाता था और फिर उसके ऊपर कुछ उत्तर अगर निकले या सलाह मशवरा करके कुछ सोल्यूशन निकले तो देखते थे। तो ये जो विश्वामित्र थे बोले, ठीक है, सबने आपको त्यागा है तो मैं आपको स्वर्ग लेके जाऊंगा मेरे तपोबल से। तो इन्होंने, विश्वामित्र ने हाथ ऊपर करके आकाश की ओर देख के कहा कि मेरा जितना तप है, अगर मैं सच में तपस्वी हूं तो ये त्रिशंकु राजा अभी स्वर्ग की ओर चले जाए, प्रस्थान करे। तो जैसा ही उन्होंने बोला तो वैसा त्रिशंकु जो है वो चांडाल का रूप का था उसका, तो वैसे रूप में वो स्वर्ग की ओर जाने लगा। अभी जैसा स्वर्ग के दरवाजे तक आया तो वहां पर इंद्रदेव खड़े थे। उन्होंने क्या किया, जैसे आया तो बोले, तुम कहां पर आ गए हो, गलत रास्ते पे आए हो, तुम इस शरीर से नहीं आ सकते। एक तो अपने गुरु का अपमान किया है, गुरु की आज्ञा नहीं मानी है, इसलिए आप स्वर्ग लोक नहीं आ सकते हो। उन्होंने ऊपर से ढकेल दिया उसको नीचे। विश्वामित्र जैसे कि वॉलीबॉल होता है, एक जाली से एक प्लेयर जो है बॉल को एक बाजू ढकेलते हैं दूसरे बाजू से इधर, तो वॉलीबॉल जैसी उसकी स्थिति हो गई। तो लास्ट में तो नहीं हो सका वो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तथाकथित लोग जो है अनेक प्रकार का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर गुरु की अवज्ञा यानी कि अपराध अगर हो जाए तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। तो हम ऐसे शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जितने भी असुर होके गए हैं, जैसे भागवत में तो पूरे भागवतम ही उसके ऊपर है टोटल, तो जितने जितने असुर होकर गए उनके अगर हम उनके पूरे जीवनी अगर पढ़े तो उसमें यही होता है कि भगवान के आदेश जो है वो पालन नहीं करते हैं और खुद जो है सृष्टि के चालक बनना चाहते हैं। और यही कारण है कि फिर उनके साथ में वो तो दुख झेलते हैं, लेकिन उनके साथ में पूरे विश्व को दुख झेलना पड़ता है। जैसे कि रावण का भी उदाहरण वैसा ही आता है। रावण जो है, ऐसा नहीं कि दूसरे की पत्नी का अपहरण करना गलत बात है, उसको मालूम नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। वो तो कहा जाता है कि बहुत बड़ा पंडित था, क्योंकि ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वो अगर यज्ञ के टाइम अगर मंत्र अगर बोलता था तो देवता भ्रमित होते थे कि इतना शुद्ध उसके उच्चारण से लेके इतनी स्पष्टता थी, लेकिन उसके बुद्धि, जैसा बताया जाता है कि बुद्धि और बल एक साथ अगर आए, उसका अगर सदुपयोग अगर किया तो बहुत ही खुद के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत ही कार्य सिद्धि अच्छी हो सकती है। लेकिन वही बुद्धि को अगर थोड़ा सा हम भगवान की ओर न होके उसके विमुख से, यानी कि खुद अगर हम चालक बनना चाहते हैं और इसी टाइप से अगर हम कर्म करें तो क्या होगा, रावण जैसी स्थिति है। रावण ने भी वही सोचा और कितने कितने उसने जो पराक्रम के बल पर, बुद्धि के बल पर उसने अनेक अनेक जो भक्त है उनको बहुत ही तकलीफ दे दी और उसका जो उसके ऊपर फिर रामायण बना इतना बड़ा कि प्रभु रामचंद्र जो है आकर उसका वध करते हैं। तो यही नहीं, मैं एक दिन रावण के बारे में देख रहा था, मतलब रावण ने कुछ तो अच्छी चीज़ें बनाई होगी क्योंकि वैज्ञानिक होगा। मैं एक 3-4 साल पहले एक पंचगव्य का मैं चल रहा था कि आर्क कैसा बनाए, तो हम ढूंढ रहे थे किसने बनाया होगा, पहला आर्क किसने बनाया होगा। तो बताया जाता है कि रावण जो है, रावण ने सबसे पहला आर्क, आर्क यानी कि दारू, मध्य मध्य में सबसे वो बुद्धिमान था, यानी कि पहली जो मध्य का जो आविष्कार किया वो रावण का है। आर्क तंत्र बोल के एक है तो उसके अंदर है उसका। तो देखो उसकी बुद्धि किस प्रकार थी, तो बुद्धिमान था, बल था, उसका सब कुछ था, लेकिन भ्रमिष्ट होने के बाद जब भी बल आ जाता है तो इस प्रकार से बुद्धि भ्रमिष्ट हो जाती है। तो इसलिए बताया जाता है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि ऐसा है। तो हम देखते हैं कि यही नहीं, जैसे हिरण्यकश्यप का भी वैसा ही है कि उसको भी ऐसा नहीं था कि मालूम नहीं था कि भगवान कौन है, भगवान विष्णु कौन है, इस सृष्टि के चालक कौन है, ब्रह्मा जी या अन्य देवता, इसके बारे में उसको मालूम नहीं था, ऐसा नहीं था, सब कुछ मालूम था। लेकिन फिर भी जब ही बल जब भी आता है मनुष्य के पास तो उसका उपयोग जो है वो अलग तरीके से करता है। जैसा कि बताया जाता है हिरण्यकश्यप का जो भाई है हिरण्याक्ष, उसने उसका जो वध हो गया और उसके हिरण्यक्ष के समीप उसके जो पूरे आप्तजन है वो विलाप कर रहे थे, तो हिरण्यकश्यप उनको एकदम सांख्य योग जैसा भगवद गीता का है उसी प्रकार वो बताता है कि ये देखो ये आज तक भाई था लेकिन अब ये शरीर से चला गया, आप शोक मत करो क्योंकि ये कुछ दिन के लिए ही हमारे साथ में था। जिस प्रकार दो लकड़ियां जो है जो पानी में बहाव में एक साथ आ जाती है कुछ क्षण के लिए और प्रवाह जैसा अलग अलग हो जाता है, उसी प्रकार लकड़ी भी जो है तो अलग अलग हो जाती है। तो कुछ दिन के लिए हमारा उनके साथ था, तो ऐसे अनेक अनेक जन्म जो है ये जीव जन्म लेता है, कभी किसी का भाई बनता है, किसी का बेटा बनता है। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप जो है उनके भाई के जो पत्नियां थी पुत्र थे उनको बता रहा है और जीव के बारे में बताता है कि जीव कभी मरता नहीं इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में वो फिर एक प्राचीन इतिहास भी बताता है कि देखो मैं आपको बताता हूँ, ये एक उशीनर नाम का एक राज्य था, उसमें सुवेद्य नाम का एक राजा यशस्वी होकर गया और ये राजा जो है युद्ध करने के लिए गया और वहाँ पर उसको शत्रु ने उसका संहार कर दिया और उसकी पत्नियाँ जो है उसको जब भी रण में पड़ा हुआ देखकर उसकी पत्नियाँ बहुत विलाप कर रही थी और वो टाइम आ गया कि अभी जो उसकी अंत्येष्टि करनी है, जिसका अंत्यविधि करनी है, लेकिन उसकी पत्नियां जो है इतने जोर से और तीव्रता से विलाप करती थी और उन्होंने उसको राजा के शव को पकड़ कर रखा था कि हम नहीं जाने देंगे। अभी वो ये समझती थी कि यही राजा है हमारा और उसका शरीर जो है लथपथ पड़ा हुआ था, शत्रु ने उनका जो देह छिन्न भिन्न कर दिया था, उसके हाथ जो है, हाथ में तलवार थी लेकिन उसके हाथ बाहु से अलग कर दिए थे, इस और धूल से उसका शरीर जो है पूरा ऐसा धूल शरीर के ऊपर पड़ी हुई थी, ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ था। लेकिन उनकी जो पत्नियां है तो उसको विलाप कर रही थी उसको देख के बहुत। तो वहीं पर ये जो विलाप है वो इतना तीव्र गति से हो रहा था कि यमराज जो है, यमराज तक वो सुनाई दे दिया उनका भाव जो है तीव्र भाव। तो यमराज एक छोटे बालक के रूप में आ जाते वहां पर, और वो बालक के रूप में वो बताते हैं कि हे आप तो वहां पर आके बैठते हैं और बताते हैं कि देखो मैं तो एक बालक हूं, आप तो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन आप इतना भी नहीं जानते कि शरीर और आत्मा ये अलग अलग वस्तुएं हैं, और जो आत्मा कभी मरता नहीं उसके लिए आप विलाप कर रहे हो, ये सब छोड़ दीजिए, आप विलाप मत करिए। और उसके बारे में वो भी पूरा तत्व ज्ञान जो है बताते हैं, लेकिन पत्नियां जो है वो विलाप जो है उनका चालू ही रहता है। फिर वो ज्ञान के बातें जो है वही भगवद गीता का दूसरा अध्याय जो है सांख्य योग जो भगवान ने बताया उसी प्रकार से पूरा बताता है। देह कभी नष्ट नहीं होता है, बाद में जैसा कि कपड़ा फटता है जैसा हम दूसरा कपड़ा पहनते हैं उसी प्रकार से पूरा यमराज जो है पूरा वहां पर बताते हैं तत्वज्ञान। तो फिर वो फिर एक कथा बताते, देखो एक शिकार करने वाला था जंगल में एक, और शिकार करते एक शिकारी था, तो वो इस प्रकार से शिकार करता था, खेल खेल में वो पंछी को मारता था, कोई प्राणी को मारता था, और ऐसे ही एक दिन उसने एक कुंजल पक्षी को मार दिया। तो दो जोड़ा था उसमें से एक को बान लग गया और वो तड़फड़ाता हुआ वो पंछी जो है नीचे गिरा। एक पंछी विलाप कर रहा था तो वो बोल रहा था कि ये मेरी पत्नी थी, अभी हमने घर बनाया था और छोटे छोटे हमारे जो घर में बच्चे थे, अगर ये मेरी पत्नी अभी मर गई, हाँ विहल थी दुखित है, अभी मैं किस लिए जीऊँ, मेरा भी कुछ इस मुझे भी कुछ मुझे भी अच्छा नहीं है, मैं अभी जिंदा रहूँ इसलिए मुझे भी मरना चाहिए, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं उनको कौन पालेगा कौन पोसेगा। तो ये जो विलाप कर रहा था उसी टाइम में उसका जो बाजू में वहाँ पर वो शिकारी छुप कर वो देख रहा था ये सब, तो उसने बराबर काल का ऐसा बताया जाता है कि काल का आदेश सुनकर उसको भी एक बाण मार दिया और बाण मार कर उसको भी नीचे गिरा दिया। तो ये सब बताने के बाद यमराज बताते हैं बालक के रूप में, तो देखो ये जिस प्रकार विलाप करते करते काल जो है नजीक आ रहा है, तो आप क्यों ऐसा विलाप कर रहे हो, आप भगवान के शरण जाइए, भगवान के शरण जाने के बाद ही आपको ये मुक्ति मिल सकती है, आपके जो पतिदेव जो गुजर गए हैं तो उनके लिए भी एक मुक्ति मिलेगी, उनको अति अच्छी गति मिलेगी। ये सब बताने के बाद जो हिरण्यकश्यप ये कथा बताता है ये सब, तो उसके बाद उनकी जो आप्तेष्ट जो है वो समझ जाते हैं कि हम जो विलाप कर रहे थे वो व्यर्थ है। लेकिन एक जगह पर हम हिरण्यकश्यप का एक बाजू का चरित्र ऐसा है कि जैसा ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं कि भगवान की महत्ता क्या है, और जब ही वो तपस्या करता है उसके बाद जब ये काम हो जाता है सब अपने अपने मार्ग में चले जाते हैं, थोड़े दिन के लिए भूल जाते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यपु जो है वो भूलता नहीं है, और फिर वो तपस्या के लिए चला जाता है। बहुत उग्र तपस्या करता है, उग्र तपस्या ऐसी करता है कि बताया जाता है कि उसके सर से ऐसी अग्नि निकलती है, प्रकट होती है, और वो आग तप के बलो तपोबल से तो पूरे सृष्टि को ऐसा पूरा एकदम ध्वस्त करना चाहती है। तो ब्रह्मा जी आकर उसको प्रसन्न होते हैं और उसको वरदान दिया जाता है, और वो अमर होना चाहता है क्योंकि उसने देखा कि मेरे भाई का मृत्यु हुआ है तो मैं क्यों ना अमर बन जाऊँ। लेकिन वो वरदान अमर जैसा ही लेता है कि मैं इसी से न मरो, न प्राणी से मरू, न कीड़ से मरू, कीड़े से, न पंछी से, या ऐसे बहुत सारे वो अलग अलग टाइप का वरदान जो है उनसे मांग लेता है। इसके पीछे का मूल कारण क्या है कि मैं बहुत शक्तिशाली होने के बाद मैं जिसने मेरे भाई को मारा है उसका मैं बदला ले सकूं, बदले की भावना है, और यही कारण फिर बल और बुद्धि ये दोनों जब भी एकाग्र हो जाती है, अगर अच्छे काम के लिए अगर हो जाए तो बहुत अच्छे काम हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी उसके अंदर अगर मन में द्वेष का अगर भाव आ जाता है या मत्सर का भाव जाता है तो बुद्धि जो है उस प्रकार से खींची जाती है। तो वो फिर मन में सोचता है कि विष्णु ने मारा है तो विष्णु को ही मैं नष्ट करूँ। विष्णु को बल कहाँ से प्राप्त होता है, ये देवी देवताओं को बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो यज्ञ करते हैं ऋषि ब्राह्मण, पहला मैं क्या करूँ, यज्ञ को मैं यज्ञ बंद कर दूँ, और यज्ञ बंद करने के बाद क्या होगा कि देवता का जो भाग है यज्ञ का या विष्णु को जो मिलने वाला जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। तो वो वही करता है, तो पूरे राज्य में उसका जो राज्य था उसे में वो वही कार्य करता है कि कोई यज्ञ ना करे, ब्राह्मण लोग जो है भगवान का नाम ना ले, जो भी कोई नाम लेगा उसको शिक्षा दी जाती थी। तो ऐसा था, इसके पीछे भी हम देखते यही भागवतम का भी पहला जो पीछे का जो अध्याय था वेन का जो है स्थिति उसी प्रकार की थी। कि फिर हुआ ऐसा कि जिस प्रकार से वो कार्य करता था उसी प्रकार का संघ भी उसको मिलता गया, जो लोग उसी प्रकार के उसी उसके स्वभाव के जो थे हिरण्यकश्यपु के, तो वो लोग को वो अच्छा लगा, और जो उसी प्रकार के स्वभाव के नहीं थे, साधु स्वभाव के थे, तो उनको वो ठीक नहीं लगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके जो पुत्र है, पुत्र ही भगवान के एक भक्त बने, लेकिन जब ये ऐसा कहा जाता है कि असुर का जो भाव है वो ये नहीं देखता है कि ये मेरा आप्त है या स्वकीय है, शत्रु भावना अगर प्रबल हो जाती तो वो अपने पुत्र को भी देखता नहीं है। तो यही हम हिरण्यकश्यपु से भी देखते हैं। तो जैसा कि हम अभी के ये तो पुराने में हो रही है बात, लेकिन अभी के जो स्थिति में अभी का जो चल रहा है स्थिति उसी में भी अगर हम देखते हैं तो आधुनिक जो वैज्ञानिक जो है वो भी चाहते कि हम भी इसी प्रकार के कुछ तो ऐसे प्रयत्न करें और हम विजय प्राप्त कर सके प्रकृति के ऊपर, और हम ऐसे शाश्वत स्थान हम प्राप्त करें। जैसा कि कोशिश तो की थी चंद्र पे जाने के लिए, चांद पे जाने के लिए, तो ऐसा बताया जाता है कि कोई प्रभुपाद बताते हैं कि कोई भी ग्रह पे या दूसरे ग्रह पे जाने के लिए उसी प्रकार का शरीर आवश्यक है। ये शरीर पे हम नहीं जा सकते, लेकिन तथाकथित जो वैज्ञानिक है वो चाहते हैं कि हम यही शरीर से हम वहाँ पर जाए, तो वह प्रयत्न चालू है। और कभी कभी आपने भी एक न्यूज़ में पढ़ा होगा या सुना होगा कि लोग अभी चांद के ऊपर प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो इतना फंसाने का है ये, लोगों को भ्रमित करना है कि इसका एक ही कारण है कि ये पृथ्वी इतनी प्रदूषित हो जाने के बाद दूसरे रहने के लिए कुछ जगह होना चाहिए। जैसे कि सिटी में या बड़े बड़े शहर जो है प्रदूषण हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए हमारा कुछ एक गांव में घर होना चाहिए, एक ही छुट्टी के दिनों में हम लोग वहाँ पर रह सके, एक खुली हवा ले सके, ऐसा है। तो यही भाव जो है अभी के जो वैज्ञानिक है वो कर रहे हैं, बड़े बड़े आधुनिक तंत्र से प्रकृति के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। जैसा कि आगे श्लोकों में भी बताया जाता है कि जैसे कि आधुनिक तकनीकों से जो मशीनरी जो है, बड़े बड़े यंत्र सामग्री है, तो खेती करना चाहते हैं कि उससे हम अनाज जो है बहुत सारा उगा सकेंगे, लेकिन ये भी संभव नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि बंजर अगर जगह है, जैसा कि कोई रेतीला रेगिस्तान है, वहाँ पर अगर आप अगर इतने आपके पास अगर बुद्धि है, तो रेगिस्तान में आप बड़े बड़े जो ट्रैक्टर आपका आपने जो अन्वेषण किया है, शोध लगा दिया है, तो कितने भी ट्रैक्टर से अगर हमने वहाँ पर जमीन अगर खुदाई की, अगर उसमें अगर हमने जो बीज अगर हम डाले, तो अच्छी फसल वहाँ पर आ सकती है क्या? तो नहीं आ सकती है, संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा वातावरण नहीं है। वहाँ पर पानी लगेगा उसके लिए, जो सब तरह की जो सिस्टम है वहाँ पर नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो जो सीमित मात्रा में हम छोटा सा एक प्रयोग करते हैं एक प्रयोगशाला में, और उसके ऊपर बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है सपने देखते हैं कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन ये करने जाते हैं तो उनका एक ही है कि विधि जो है योग्य नहीं है। विधि विधान के साथ में अगर शास्त्रों में जो बताया है उसी प्रकार से अगर किया तो ये संभव है। जैसा कि यहाँ पर बताया जाता है कि भूमि जो है, भूमि देवी बताती है कि प्रतु महाराज के लिए कि अगर आपको मैं बताती हूँ इस प्रकार से, अगर आप पद्धति अगर करते हो, तो आप ये संभव है कि आप बहुत सारे अनाज उगा सकते हैं और प्रजा के लिए जितना चाहिए उतना आप कर सकते हैं। तो वो एक बताती है प्रणाली जो है कि एक बात ऐसा कीजिए आप, क्योंकि आप राजा है, तो मैं तो गाय हूँ, गाय के रूप में आई हूँ, और गाय के रूप आने से कि मैं प्रसन्न किस में हो जाऊँगी, तो कोई किसी को तो बछड़ा बनाइए आप, तो बछड़े को देखकर क्या होगा, मेरे शरीर में दूध उत्पन्न होगा, मेरे में दूध उत्पन्न होगा, और उसको धोने के लिए भी कोई तो चाहिए, और जिसके अंदर दूध जो है जमा करने के लिए भी कोई तो चाहिए, ये आप उपक्रम कीजिए, तो फिर मैं क्या होंगी, प्रसन्न हो जाऊंगी। तो हम ये देखते हैं, अब ये तो शास्त्र में बताया है, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि गाय जो है, गाय अगर गाय को प्रसन्न करना है तो कभी प्रसन्न हो सकती है देखा जाए तो गाय को अगर दोहन करना है, उससे दूध निकालना है या उससे सत्व निकालना है, दूध यानी कि सत्व ही है, गाय को अगर प्रसन्न करना है तो पहला उसको बछड़ा जो है, बछड़े को दूध देना पड़ेगा पहला, ये विधि है। और बछड़े को दूध देने के बाद जब वो प्रसन्न हो जाएगी, और प्रसन्नता के साथ में फिर वो जो दूध जो है वो और ज़्यादा दे सकेगी। तो अभी शास्त्रों का तो थोड़ा ऐसा नहीं कि कोई वैज्ञानिक पढ़ते हैं, थोड़ा तो भाग लेते हैं लेकिन उसके अलावा उसके विरुद्ध दिशा में जाते हैं। तो ठीक है, बछड़ा जो है, बछड़े अभी ये वैज्ञानिक फिर उस हिसाब से करते कि बछड़ा क्यों, लेकिन बछड़े को भी दूध लगता है, इसका मतलब जिसके लिए हमने गाय पाली वो हमको दूध चाहिए, और अगर दूध बछड़ा अगर पिए तो हमें क्या मिलेगा। तो फिर उसके ऊपर उनकी उन्होंने रिसर्च किया है कि अलग अलग प्रकार के जो इंजेक्शंस है तो गाय को दीजिए, जैसे कि ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन है, तो उसको अगर इंजेक्शन अगर दिया गाय को तो जैसा कि बछड़े को देखकर उसके जो हार्मोन्स जो है गाय के जो दूध देने योग्य होते हैं तो उसी प्रकार का जो है गाय की स्थिति होती है और दूध निकालते हैं। आजकल की जितना भी गौशालाएँ है, बहुत सारे गौशाला में हमारे बड़े बड़े तबेले जो है उसमें किया जाता है, और बहुत सारे गौशाला अगर गए तो हमें बछड़ा ही दिखता नहीं है बाहर अगर गए तो, क्यों बछड़े को रखते ही नहीं लोग, खाली दूध से उनको मतलब है। तो ये तथाकथित जो विज्ञान है इस तरह हम लगाते हैं। तो उसके साथ में क्या होता है, अगर हम इस प्रकार से भी अगर दूध निकाला तो होता है क्या, जो औषधि जो है, जो दवाई जो है, एक प्रकार का क्या है, जहर जैसा है। और एक स्वाभाविक स्थिति है कि गाय ने पहले दिन जो भी कुछ खाया उसका सत्व जो है दूध के अंदर दूसरे दिन उतर जाता है, 12 घंटे के अंदर हुए ये प्रोसेस है, आ जाता है उसमें। अगर लास्ट दिन, अगर पहले दिन अगर वो गाय ने प्याज या कुछ अगर उसके पत्ते अगर खाए होंगे तो दूसरे दिन जो है वो दूध में प्याज का गंदा आना चालू हो जाता है, तो ये स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार से अगर इंजेक्शन्स या ऐसे जहरीले दवाएं आज पशुओं को देकर दूध निकाला जाता है, यानी कि वो खींचा जाता है दूध, और वो दूध भी दोहन के लिए कोई जीव नहीं रहता है, दूध निकालने वाला भी कोई आदमी नहीं रहता है, धोने वाला भी। तो आजकल क्या आ रही है, मशीन्स भी आ रही है, मशीन्स के द्वारा दूध निकाले जाता है, यानी गाय को भी मशीन माना है और धोने वाला भी जो है मशीन्स के द्वारा करते हैं। तो ये सब जो है प्रकृति के पूरा उलट 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 पुलट जो है ये हो रहा है, और यही कारण है कि बड़े बड़े जो बीमारी है जो है, जो हम आज बहुत हम गर्व से कहते, कभी कभी हमारे यहाँ पर हम देसी गाय का दूध पीते हैं, हम A2 मिल्क पीते हैं, लेकिन अगर A2 मिल्क तो पीते हो गए, लेकिन किस प्रकार से अगर उसका दूध निकालते ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि उसका दूध का जिस प्रकार आप बर्ताव करोगे गायों के साथ में उसी प्रकार का दूध का भाव है दूध के साथ में आ जाता है। जिस घर में ऐसा बताया जाता है कि जिस घर के आंगन में गाय अगर प्रेम से रहती है, आनंद से रहती है, उसको हरा चारा अगर मिलता है और सब उसको एक अपना परिवार के जैसा मानते हैं, तो गाय भी जब भी उसको छोड़ते हैं तो जंगल में जाती है और जो हरी भरी पत्तियां जो है खाती है। जो मालिक को अगर उसको पता चला कि घर के कोई बीमार आदमी है, बीमार कोई सदस्य है, तो उसी प्रकार के औषधियाँ जो खाकर वो दूध के द्वारा जो घर के लिए वो पोषण करती है, यानी कि वो भी ये समझती है कि मैं भी ये घर का सदस्य हूँ। अभी गौशालाएँ जो है ये क्यों आ गए, जैसा कि एक क्योंकि घर घर के हर घर में पहले गाय होती थी लेकिन घर के बाहर गाय गई, अभी एक जगह पर गाय पाली जाती है, पालन किया जाता है, वो बूढ़ी होगी, कोई लंगड़ी होगी, कोई लूली होगी, कोई रस्ते पे पीड़ी होगी, ऐसे जो संस्था है वो गाय को पालते हैं, बड़े बड़े संस्थाएं उसको ही करती है। लेकिन पहला ऐसा नहीं होता था, हर घर में गाय होती थी और बीमारियां भी कम होती थी, क्योंकि गाय एक डॉक्टर के रूप में काम करती थी। तो हम ये देखते हैं कि जो गाय का जो है महत्व शास्त्रों में इसी प्रकार बताया गया है कि जैसा कि हम पहले से अगर देखें शास्त्रों में भी, जिस बड़े बड़े ऋषि भी थे उनके आश्रम में भी गाय हुआ करती थी, बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। और अभी भी जो है, अगर गाय अगर कहाँ मिलती तो गौशाला के सिवा कुछ मिलती नहीं है गाय, क्योंकि गाय नष्ट बाहर हो गए घर से। तो ये सब विज्ञान जो है, हम ये चाहते हैं कि सब शॉर्टकट चाहते हैं कि गाय नहीं चाहिए लेकिन दूध चाहिए। और फिर सामने जो बोलते हैं ना कि अगर हम फंसना चाहते हैं तो फंसाने वाले भी बहुत है। तो एक 5 साल पहले एक महाराष्ट्र में अकाल गिरा था, 5-6 साल पहले, बहुत सारा तो हरा चारा भी नहीं था महाराष्ट्र में। तो लेकिन क्योंकि गाय की लगता है क्या है, हरा चारा, सूखा चारा, पानी की उपलब्धता, ये सब चाहिए। लेकिन दूध की कोई कमी नहीं होती थी, उतना ही सप्लाई जो है बड़े बड़े शहरों में टैंकर से टैंकर दूध आता था। और बीच में एक रैकेट पकड़ा गया कि मिलावट जो है वो पकड़ी गई। तो दूसरे दिन एक एक तालुका, जो एक एक डिस्ट्रिक्ट है, एक एक दो दो टैंकर कम हो गए दूसरे तो तीसरे दिन से। तो इतनी मिलावट ये दूध के अंदर होती थी। तो ऐसा नहीं कि बंद हो गई है, अभी भी बाहर चालू है ऐसा। तो दूध का मेन सोर्स, दूध का उद्देश्य क्या है कि इस पूरे शरीर को पोषण करना। तो यहाँ पर भी पृथ्वी देवी जो है, ये भूमि देवी, ये बताती है कि इसी प्रकार अगर आप दोहन करोगे मेरा तो क्या होगा, मैं प्रसन्न हो जाओगी बछड़े बछड़े को देखकर। अगर प्रसन्न हो जाओगी तो मेरा कोई दोहन करेगा, दोहन के लिए फिर पात्र लगेगा। तो ये अगर आप सामग्री जुटा पाते हैं तो ये जो आपने, और फिर और एक विधि बताती हो कि खेती किस प्रकार से करनी चाहिए। तो प्रथु महाराज को ये सब पूरा बताती कि जमीन क्या करो आप, इतना ही नहीं एक विधि बताती है कि जमीन समतल करो। और जमीन समतल करने के बाद क्या होगा, जहां पर बारिश नहीं होगी, अगर समतल जमीन होगी तो क्या कि जहां पर पानी नहीं जाता है बारिश में तो वहां पर भी पानी जाएगा और फिर जमीन उपजाऊ बनेगी, यानी भूमि उपजाऊ बनेगी। और सब तरह पर जो आपका उद्देश्य है, जो कि अन्न चाहिए, तो ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकता है। तो हम अभी बहुत बार ऐसा हम अनुमान लगाते हैं कि एक एकड़ में या ये भूमि में इतना इतना अनाज निकलेगा, अनुमान बहुत बार ऐसा होता है। तो भूमि के पास इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति है कि वो कुछ छोटी जगह पर भी बहुत सारा उत्पादन कर सकती है। क्योंकि वो प्रथु महाराज को बताती है कि मैं जितना चाहे उतना मैं फसल जो है मेरे इसमें आ सकता है, लेकिन उसका ये भी बताती है कि कभी आ सकेगा वो, जभी भक्त बनेंगे, भक्तों के द्वारा ये सब होगा। विधि विधान जो है शास्त्रों में बताया गया है कि यज्ञ करना पड़ेगा, देवी देवता जो है प्रसन्न होंगे, भगवान जब भी प्रसन्न होंगे तभी ये सब संभव है। तो हम ये देखते हैं कि अभी ये बातें जो है वो पहले युग की है, लेकिन अगर अभी अगर हम देखते हैं, स्थिति तो कोई बदली नहीं है। अगर योग भी बदला है लेकिन स्थिति तो वैसी की वैसी है। कहीं जगह पर अकाल पड़ता है, कहीं जगह पर इतनी बारिश होगी कि वहाँ पर जो खेत का जो ऊपर का जो अच्छा जो मृदा जो है वो सब बहकर चला जाता है। तो एक जगह पर यानी कि विषम स्थिति जो है इस प्रकार की बनी जाती है। तो ये सब तभी संभव हो सकता है कि जब यज्ञ जो है, यज्ञ होगा और यज्ञ के द्वारा ये सब संभव हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि कलयुग का यज्ञ कौन सा है। तो चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन जो आंदोलन लेकर आए हैं कलयुग का, जो ये महा मंत्र के द्वारा ये यज्ञ है, अगर हम ये यज्ञ संकीर्तन यज्ञ अगर हम करते हैं तो भूमि भी जो है सुजलाम सुफलाम हो सकती है। और संकीर्तन यज्ञ से क्या होगा कि जो दोष है मनुष्य के, क्योंकि संकीर्तन हरिनाम से जो है, हरिनाम से क्या होगा कि उसका जिस प्रकार से पहले यज्ञ किया जाता था देवी देवता प्रसन्न होते थे, उसी प्रकार देवी देवता प्रसन्न हो सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में जल की वर्षा हो सकती है और भरपूर बहुत इससे अनाज भी आ सकता है। यही विधि जो है जो शास्त्र में भागवतम में दी है, यही विधि जो है हम अगर इस युग में अगर करें तो ये संभव हो सकता है। तो आज का हम देखते हैं कि यानी ये विधि को बाजू में हटाकर हम दूसरा देखते हैं कि और कोई हरिनाम जो है तो बहुत सादा सा है, कोई भी ले सकता है, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है तो उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करते, ऐसा कैसा हो सकता है, हरिनाम से ऐसा कैसा संभव है। तो बहुत ऐसा हम देखते हैं कि अगर कोई भूमि जो है वहाँ पर संकीर्तन ज़्यादा होता है तो वो भूमि के दोष जो है वो चले जाते हैं। तो एवन वास्तु भी क्यों ना हो, वास्तु में भी अगर हम संकीर्तन करते हैं तो वास्तु के दोष भी चले जाते हैं, यही संकीर्तन की महिमा है। तो हम संकीर्तन आंदोलन जो है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ, जो प्रभुपाद ने हमारे साथ में सौंपा है, अगर ये हम आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये जो आजकल का जो प्रदूषण युक्त तो माहौल है वो हम उसको ठीक कर सकते हैं। और वो है हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। अगर कोई किसकी प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है तो दे सकते। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।